الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من صلی علی فی یوم خمسین مرہ صافحتہ یوم القیامہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام، فرمایا جس نے دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے درس بخاری شریف میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ناظرین، صحیح بخاری شریف میں حدیث نمبر ہے 6472 اور عنوان جو قائم کیا گیا، حضرت امام بخاری علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں، باب وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یہ باب اس حوالے سے ہے، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو وہ اسے کافی ہے۔ توکل کے لغوی معنی کے حوالے سے علماء فرماتے ہیں، کسی چیز کی پناہ لے لینا اور اس پر اعتماد کر لینا، ٹرسٹ کر لینا، بھروسہ کر لینا، یہ توکل ہے۔ اور اگر اصطلاحی اعتبار سے اس کو دیکھا جائے تو توکل کے معنی یہ بنیں گے کہ اسباب سے قطع نظر کرنا، اپنے معاملے کو اللہ تبارک و تعالی کے سپرد کر دینا۔ اسباب سے قطع نظر، اپنے معاملے کو اللہ تبارک و تعالی کے سپرد کر دینا۔ البتہ اسباب کو چھوڑ دیا جائے یہ مراد نہیں ہے یہاں پر، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اسباب کو چھوڑ دیا جائے، یا یوں کہا جائے کہ اسباب کو چھوڑ دینا یہ ضروری ہے توکل کے لیے، اسباب بھی بنائے جائیں یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ جی ہاں، اسباب بنا لیے اور اللہ پر بھروسہ کیا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جیسے وہ ایک روایت تھی کہ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹ کی رسی باندھے اور پھر اللہ پر توکل کریں یا اسے چھوڑ دیں؟ تو کہا پہلے اونٹ کی رسی باندھو، پھر اللہ پر توکل کرو، بھروسہ کرو۔ تو اسباب بنا لینا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ حضرت امام احمد رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ ایک آدمی گھر میں بیٹھا یا مسجد میں ہے اور اس نے کہا کہ میں کوئی کام نہیں کروں گا یہاں تک کہ میرا رزق میرے پاس آ جائے، تو آپ نے کہا کہ یہ آدمی علم سے جاہل ہے، اسے معلومات نہیں ہے۔ گویا توکل کے جو حقیقی معنی ہے یہ اس سے جاہل ہے، اسے جاننے والا نہیں ہے۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالی نے میرے رزق کو میرے نیزوں کے سائے کے نیچے رکھا ہے۔ حرکت میں برکت ہوتی ہے، جو انسان اللہ پر توکل کرتا ہے رب کریم اس کے لیے کافی ہے۔ حدیث مبارک میں صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، اس میں فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، کہ اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے، یعنی جیسا بھروسہ ہونا چاہیے، अगर तुम अल्लाह पर वैसा भरोसा कर लो तो वो तुम्हें इस तरह रिस्क फराहम करे जिस तरह वो परिंदों को रिस्क फराहम करता है। और वो किस तरह है? फरमाया कि वो सुबह को भूखे और प्यासे अपने घर से निकलते हैं और जब शाम आती है तो शिकम शेर होकर अपने घर में वापस आ जाते हैं। तो गया ये बता दिया गया कि वो सुबह और शाम रिस्क की तलब में निकलते हैं और रब्बे करीम उन्हें रिस्क अता भी फरमा देता है। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान तिजारत करते थे और बागात में काम करते थे। ये काम करना ये असबाब हैं और अल्लाह को यह पसंद है। मेहनत कार जो होता है ये अल्लाह तबारक व ताला का दोस्त है। तो अल्लाह करीम पर इंसान को चाहिए कि वो भरोसा करे, तवक्कुल करे, उसके ऊपर ट्रस्ट करे और भरोसा भी ऐसा हो जैसा भरोसा करने का हक है। इस उन्वान के बाद हजरत इमाम बुखारी अलै रहमतुल्लाह अलवाली ने हजरत रबी बिन खुसैम रदी अल्लाह ताला अन्हो का एक कौल जिक्र किया। हजरत रबी बिन खुसैम रदी अल्लाह ताला अन्हो ये कूफा के रहने वाले हैं और किबार ताबईन में इनका शुमार होता है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हो की मुसाहबत में रहे हैं। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने किताब ज़ोहद में सनद जदीद के साथ ये रिवायत की है कि हजरत इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हो इनसे ये कहते थे कि अगर तुमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख लेते तो तुमसे मोहब्बत करते। यानी आमाल के एतबार से ऐसे थे, परहेजगार और मुत्तकी थे कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें देखते और तुम्हारे आमाल को देखते तो अल्लाह के रसूल भी तुमसे मोहब्बत करते। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह इनके कौल को जिक्र करते हुए फरमाते हैं, कौल रबी इब्नु खुसैम मिन कुल्ली मा दाक़ी अलन नास। रबी बिन खुसैम रदी अल्लाह ताला ने कहा कि तवक्कुल हर उस चीज से है जो लोगों पर तंग है और दुश्वार है। इनकी मुराद ये है कि जिसने अल्लाह पर तवक्कुल किया तो वो उसको काफी हो जाता है। ये हर उस चीज से है जो लोगों पर तंग और दुश्वार है। और उलमा ने लिखा कि अल्लाह पर तवक्कुल करना हर उस चीज से आम है जो लोगों पर दुश्वार हो। यानी तवक्कुल किसी ऐसे काम में खुसूसियत नहीं रखता जो मुश्किल और दुश्वार होता है, बल्कि तमाम उमूर में अल्लाह पर तवक्कुल करना चाहिए जिनमें लोगों को तंगी होती है। ओवरऑल हर मामले में इंसान को चाहिए कि अपने रब पर तवक्कुल करे, अपने रब पर भरोसा करे। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस उन्वान के बाद एक हदीस मुबारक को जिक्र करते हैं। हदीस नंबर है 6472। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा इस हदीस के रावी हैं, अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौल यदखुलुल जन्नत मिन उम्मती 70 अल्फन बिगैर हिसाब हुमुल लजीन ला यस्तरकून वला यतत्वयरून वअला रब्बिहिम यतवक्कलून। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के 70,000 लोग बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। और फरमाया, ये वो लोग होंगे जो झाड़ फूंक नहीं कराते और ना ही बुरा शगुन लेते हैं, बल्कि अपने रब पर ही ये भरोसा करते हैं, तवक्कुल करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। इस हदीस मुबारक में बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाने वाले जिन 70,000 लोगों का तस्किरा किया गया है उनके बारे में फरमाया गया कि इनमें तीन चीजें पाई जाती होंगी। उनमें से जो पहली चीज है कि ये वो लोग हैं जो झाड़ फूंक नहीं कराते और दूसरे और ना शगुन लेते हैं और तीसरी बात बल्कि अपने रब पर ही भरोसा करते हैं। आइए भी तरतीब इन तीनों के बारे में हम जिक्र करते हैं। तवक्कुल के हवाले से तो आप पहले ही शुरू में उनवान के तहत कुछ मुख्तसर गुफ्तगू समाप्त कर चुके हैं। जो इन तीनों में से पहली बात है वो दम करने को तलब नहीं करते। इन अल्फाज का मतलब यह है कि कोई शख्स किसी आफत में मुबतला हो जाए, किसी परेशानी में, किसी बीमारी में आ जाए, मसलन उसको बुखार आ गया या कोई इसके ऊपर अचानक आफत आ पड़ी है, अचानक मुसीबत में गिर गया है, और वो तावीज़ को तलब करे या किसी बुजुर्ग के पास चला जाए और वहां जाकर के अपनी बीमारी के हवाले से उनके सामने जिक्र करके उनसे दम करवा ले। गोया ये बयान किया जा रहा है कि ये लोग ऐसा नहीं करते होंगे। यहां हदीस मुबारक में इस बात पर एतराज होता है कि फिर उन बाज अहादीस का क्या जवाब होगा कि जिनमें दम करने और करवाने का जवाज बयान किया गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर किसी को नजर लग जाए तो उसके लिए दम को तलब करो, यानी ऐसे बंदे को तलब करो जो इसको दम कर दे और इसकी बीमारी दूर हो जाए। और यहां इस हदीस में इसके बिल्कुल बराक्स जिक्र है, तो इन दोनों में तत्बीक क्या होगी और दोनों का जवाब क्या होगा? शारीन हदीस ने इसके जवाब के हवाले से फरमाया कि इन दोनों तरह की अहादीस के अंदर तत्बीक दी जा सकती है, इस तरह कि शरीयत मुतहरा में ऐसे तावीजात या ऐसे दम करवाने की इजाजत दी गई है जो कुरानी आयात बज्जिनात और अहादीस मुबारका के ऊपर मुश्तमिल होते हैं या ऐसे कलिमात पर मुश्तमिल हो जिनमें कोई शिर्क वगैरह की बात ना हो, कोई खिलाफ शरा बात ना हो, खिलाफ शरा काम ना किया जाए। अलबत्ता अगर तावीज किसी भी खिलाफ शरा बात के ऊपर मुश्तमिल होगा या कम अज कम ऐसे अल्फाज पर मबनी होगा कि जिसका जो माना है वो मालूम ही ना हो, तो ऐसे तावीजात वगैरह करवाने की शरीयत मुतहरा इजाजत नहीं देती। और ये तावीज वगैरह उस सूरत में भी मना होंगे जब इन्हें मुअस्सिर हकीकी समझा जाए, क्योंकि मुअस्सिर हकीकी जो है वो तो अल्लाह तबारक व ताला की ज़ाते पाक है। तावीज वगैरह ये सिर्फ और सिर्फ ये असबाब के कबील से है, ये जराए के कबील से है। और ये भी जहन में ना हो कि इससे यकीनी और कतई तौर पर वो आफत दूर भी हो जाएगी, यानी इस तरह इलाज को जिस तरह दीगर इलाज करवाने को जन्नी समझा जाता है, ऐसे ही इस तरह के इलाज जो है उन्हें भी जन्नी कंसीडर किया जाए, कतई और यकीनी नहीं। और ये जहन में हो कि शिफा जो होती है वो मिन जानिबिल्लाह होती है, यानी अल्लाह की तरफ से होती, वो चाहे तो इस दम में शिफा आ जाए, वो चाहे तो ना आए, वो चाहे तो इस तावीज से शिफा मिल जाए, वो चाहे तो ना आए। और अगर वो चाहे तो ये जो हमने सबब बनाया है इस सबब के जरिए से वो हमें शिफा अता भी कर देगा, ये उसकी मर्जी पर डिपेंड होता है। तो इससे मालूम ये हुआ कि जायज कलाम के साथ तावीज और दम वगैरह करना ये शरण बिल्कुल एक जायज अमल है और ये इलाज के तरीकों में से एक तरीका है, इलाज है। और इसके जवाब के ऊपर कुरान और हदीस में दलाइल मौजूद है। उलमा फरमाते हैं कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में सूरह बनी इसराइल में आयत नंबर 82 में अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है वनुनज्जिलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउ व रहमतुल लिल मुमिनीन, और हम कुरान में उतारते हैं वो चीज के जो ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत है। इमाम मालिक अलैहि रहमतुल्लाह वाली आप फरमाते हैं कि ऐसा तावीज जिसमें अल्लाह तबारक व ताला के अस्मा मौजूद हों, मरीजों के गले में बतौर तबर्रुक लटकाने में कोई हर्ज नहीं है, जबकि इससे मुदाफातुल ऐन का इरादा न करे, इससे मुराद यह है कि नुजूले बला के बाद इसके दूर होने की उम्मीद करते हुए लटकाने में हर्ज नहीं, यानी यहां पर उम्मीद है, जैसे नजर का वो दम के जिसके मुतालिक हदीस के अंदर एक दुआ वारिद हुई। बहरहाल नुजूले बला यानी मुसीबत के नाजिल होने से कबल तो इसमें कोई हर्ज नहीं। इस हवाले से इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यह बयान किया कि अभी मुसीबत नाजिल नहीं हुई और इससे पहले ही यह काम करना, तो कहा कि इसमें हर्ज है, लेकिन यह एक सिर्फ गरीब कौल है। इस हवाले से जो असल बात है वो ये है कि इस जरिए से कि कुरान की आयात मस्जिनात पढ़ी जाएंगी और दम करवा लिया जाएगा, तो शरण इसमें कोई कबाहत नहीं है, कोई हर्ज नहीं, किसी किस्म की कोई कराहत नहीं, खा नुजूले बला से पहले हो या नुजूले बला के बाद हो। यह कैद लगा देना कि नुजूले बला के बाद तो जायज है, इससे पहले जायज नहीं, कहा कि यह तकसीम दुरुस्त नहीं है। तावीज़ात और दम के जवाज के मुतालिक चंद अहादीस मुबारक समाअत फरमाइए। सही मुस्लिम शिव की हदीस मुबारक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बांदी पर नजर बद के असरात को जब मुलाहजा फरमाया तो इरशाद फरमाया इससे नजर बद लगी है, लिहाजा इसके लिए दम कर दो। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा दुआया कलिमात पर मुश्तमिल तावीज बच्चों के गले में लटकाया करते थे। जामे तिरमजी की हदीस मुबारक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम में से कोई अपने ख्वाब से घबरा जाए तो वो ये दुआ पढ़ा करे। वो दुआ क्या है? अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि तामाति मिन ग़ज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमज़ाति शैतान व अन यहदुरून। और इरशाद फरमाया कि अगर ये अमल किया जाए तो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचेगा। अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा अपनी बालिग औलाद को यह सिखाते थे और इनमें से जो नाबालिग होते उनके गले में किसी कागज के ऊपर लिख कर फिर आप डाल दिया करते थे। और हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा आप बयान करते हैं कि सहाबा किराम अली रिदवान की एक जमात थी, किसी घाट से आप गुजर रहे थे जिसमें सांप या बिच्छू का डसा हुआ एक शख्स था। वहां के जो घाट वाले थे उन्होंने सहाबा किराम अली रिदवान की खिदमत में अर्ज करने लगे और कहने लगे, क्या तुम में से कोई ऐसा बंदा है कि जो दम करने वाला हो? क्योंकि घाट में एक शख्स ऐसा है जिसे सांप या बिच्छू ने डंग मार लिया है। तो सहाबा किराम अली रिदवान में से एक सहाबी थे, वो उनके साथ चल पड़े कि जी हां मैं हूं, मैं दम कर देता हूं, और शर्त यह कर ली कि इसके बदले में बकरियां ली जाएंगी। वहां जाकर सूरह फातिहा पढ़ी, सूरह फातिहा पढ़कर उसे दम कर दिया तो वो बंदा ठीक हो गया। दम करने वाले सहाबी रदी अल्लाह ताला नो दीगर सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के पास दम के बदले में जो वसूल होने वाली बकरियां थी, जब वो लेकर आए तो दीगर जो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान थे उन्होंने इसे नापसंद किया और कहा कि तुमने किताबुल्लाह पर उजरत ली है। जब मदीना मुनवरा में आए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर फिर अर्ज करने लगे कि हजूर फुलां सहाबी ने किताबुल्लाह पर इस तरह से उजरत ली है। तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिन चीजों पर तुम उजरत लेते हो उनमें ज्यादा हकदार किताबुल्लाह है, यानी जो उजरत ली गई है गोया हजूर नबी अलैहि सलाम ने यह फतवा दे दिया कि वो जायज है। इसके जवाब के बाद जो बात हम समझना चाह रहे हैं वो ये है कि जो दम किया गया गोया कि वो एक जायज अमल किया गया। हजरत आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा ज़ाहिदा आबिदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया या आपने मुझे फरमाया कि नजर लगने के बाद दम को तलब किया जाए। इस हदीस मुबारक से भी बिल्कुल जवाब वाज़े है और यह सही बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक 5738 हदीस मुबारक। और हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक और रिवायत को बयान किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार के अहले बैत के लिए हर जहरीले जानवर के डसने से दम कराने की रुख्सत दी थी। हजरत आमिर बिन रबिया रदी अल्लाह ताला ने बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स अपने आप को या अपने माल को या अपने भाई को देखे और वो उसे अच्छा लगे तो उसे चाहिए कि बरकत की दुआ करे, क्योंकि नजर का लगना ये बरहक है। जी हां, जब नजर लग जाए तो उसे दम करके शिफा मिल जाती। खुलासतन ये बात मैं अर्ज कर रहा हूं कि मस्कूरा तमाम दलायल को अगर सामने रखें तो यह बात साबित हो जाती है कि कुरान और हदीस के मुताबिक जायज कलिमात या जायज अमल पर मुश्तमिल तावीज़ात या दम वगैरह ये बिल्कुल एक जायज अमल है, इसमें कोई हर्ज नहीं। البتہ وہ روایات کہ جن سے تعویذات وغیرہ کی ممانعت ثابت ہوتی ہے، شارح حدیث نے ان کے محامل اور ان کے مطالب کو بیان کیا۔ آئیے وہ بھی سماعت کر لیجیے کہ جن میں اس سے ممانعت ہے، وہ ممانعت کی وجہ کیا ہے۔ علماء نے فرمایا کہ ممانعت ایسے تعویذ یا دم وغیرہ سے ہے کہ جن میں شرکیہ اور کفریہ کلمات یا ممنوع کلمات موجود ہوتے ہیں، لہذا جس میں ایسی کوئی خلاف شرع بات نظر آئے تو وہاں پر ممانعت کی جائے گی۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس سے مراد وہ دم ہے کہ جس میں کفار کے منتر وغیرہ میں سے کچھ پڑھا جاتا ہے، یا ایسے کلمات پر مشتمل ہے کہ جس کے معنی معلوم ہی نہیں ہوتے، کیونکہ اس صورت میں یہ احتمال بھی موجود ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جس کے معنی معلوم نہیں اس کے معنی کفریہ ہو، لہذا اس سے بھی پھر ممانعت کر دی گئی۔ جیسا کہ امام نووی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے صحیح مسلم شریف کی شرح کے اندر اسے بیان فرمایا۔ اور ایک مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ممانعت ان لوگوں کے متعلق ہے جو اس تعویذ وغیرہ کو مؤثر حقیقی سمجھ بیٹھتے ہیں، حالانکہ مؤثر حقیقی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ تعویذ وغیرہ یہ سب کے سب ذرائع ہیں اور یہ اسباب کی قبیل سے ہوتے ہیں، یا ممانعت ایسی چیزوں سے متعلق ہے کہ جن اشیاء کے متعلق کفار کے ذہن میں تاثیر کا عقیدہ راسخ ہو چکا تھا، اور علماء نے اس بات کو بھی بیان کیا۔ یا پھر ممانعت والی روایات سے یہ مراد ہے کہ جو شیطانی منتر ہے یا جادو ہے یا ایسا عمل کہ جسے کسی ناجائز کام کے لیے کیا جاتا ہے، جیسے میاں بیوی کے درمیان لڑائی کرا دینا انہیں الگ الگ کروانے کے لیے، اور یہ عمل تو بالکل درستی نہیں ہے، خلاف شرع عمل ہے، تو ممانعت بھی پھر روایات کے اندر جو کی گئی ہے وہ اس طرح کے منتر یا جادو اور عمل کے بارے میں ہے کہ جو خلاف شرع کام کی طرف ابھار رہا ہے۔ اور یا پھر فرمایا کہ پہلے اس سے ممانعت تھی اوائل اسلام میں، لیکن بعد میں جائز کلمات پر جو مشتمل تعویذات وغیرہ ہیں ان کی گویا کہ اجازت دے دی گئی۔ یعنی ممانعت والی روایات یہ منسوخ ہیں، اور جو اجازت والی روایات ہیں وہ ان کی ناسخ بن جاتی ہیں۔ اس لیے مدنی چینل کے ناظرین، ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور آج کے سلسلے میں حدیث مبارک میں جو بات بیان کی گئی، اور یہ شگون نہ لیتے ہوں گے جن 70,000 لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا، یہ شگون نہ لیتے یعنی بدفعلی نہیں لیتے ہوں گے۔ اور اسلام میں پہلے جاہلیت میں یہ لوگوں کی عادت تھی کہ زمانے جاہلیت میں وہ پرندوں کو اڑاتے، اگر وہ دائیں طرف اڑ جاتا تو کہتے کہ یہ ایک اچھا عمل ہے، اسے اچھا شگون لیتے تھے، اور اگر وہ پرندہ جو ہے وہ بائیں طرف اڑ جاتا تو اسے برا فال لیتے تھے اور کہتے کہ یہ بدشگونی ہے، یہ کام ہم نے نہیں کرنا، اور اسلام نے اس بات سے منع کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا من تطیر، جس نے بدشگونی لی وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ ہمارے طریقے پر نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدفعلی نکالنے سے منع فرمایا، کیونکہ بدفعلی یہ اوہام اور تخیلات کے جو دروازے ہیں یہ انہیں کھول دیتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل سے بندے کو دور کر دیتی ہے۔ اور نیک فعل لینا اس میں کوئی حرج نہیں، یہ ایک جائز عمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نیک فعل لیا کرتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے بندے کے دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے میں حدیث مبارک 6472، عنوان تھا اللہ پر توکل کا، اور حدیث میں تین باتیں تھیں۔ ایک تو بدشگونی نہیں لینی، ہمیشہ اچھا شگون لینا ہے، اپنے رب پر بھروسہ کرنا ہے، یہ دوسری بات ہے۔ اور تیسری بات، دم درود جائز ہے، تعویذات جائز ہیں، بشرطے کے کفریات اور شرکیات کے الفاظ پر اور عملوں پر مبنی نہ ہو، یا ایسے الفاظ کے ساتھ نہ لکھے جائیں کہ جن کے معنی معلوم نہیں ہوتے، یا وہ ایسے جملے ہیں کہ جو ممنوع ہیں، جن کا کہنا، جن کا لکھنا، جن کا بولنا یہ ممنوع ہے، ایسے نہ ہو۔ اور اگر جائز ہیں، قرآن اور احادیث کی دعائیں ہیں، جیسا کہ احادیث سے آپ نے سماعت کیا، तो इसमें शरण कोई हर्ज नहीं, इनसे फैज लिया जा सकता है, बशर्ते कि जहन में यह हो कि मुअस्सिर हकीकी अल्लाह की जात है। ये चीजें भी असर तभी करती हैं या इन तरीका इलाज को अपनाने में असर तब ही होता है कि जब रब चाहता है, यकीनन उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होता। अल्लाह करीम हम सब को इन बातों को याद रखने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी जिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
ईमान है।